वक्त की धूप में पकी हुई चीजें वाकई कीमती होती हैं, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। तो इसी विचार और आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोता सदस्यों को नमस्कार करते हुए बृहस्पतिवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में आई शुरू करें समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो एक बार फिर स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर का नमस्कार। और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं मेरी सहयोगी शेफाली सिंह। शेफाली, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार रवि, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। सो डियर लिसनर्स, जैसा कि रवि ने हमें बताया कि वक्त की धूप की कीमत कितनी होती है, तो इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू पेज ऑफ योर लाइफ, सो वी शुड राइट अ स्टोरी दैट मेक्स अस हैप्पी। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम आज सवेरे की, वेयर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 19th ऑफ सितंबर। सो रवि, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार करना भारतीय लोकतंत्र को और भी जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सराहना की।
Jammu and Kashmir has recorded the highest voter turnout in the last 35 years, with over 61% polling in the first phase of assembly polls yesterday. Voting was peaceful across all 24 assembly constituencies, spanning seven districts of Pulwama, Shopian, Kulgam, Kishtwar, Anantnag, Ramban and Doda. Election Commission noted that youth and women voters shone brightly at the polling stations, a testament to the deepening embrace of democracy in J&K. It added that their enthusiasm to cast their votes is an emphatic response in favour of the ballot against boycotts and violence. Long queues of voters at the polling stations showcase to the world the deep trust and confidence of the people of J&K in the democratic exercise. Along with webcasting in all polling stations, 32 central observers kept a vigilant eye on the election process on the ground, ensuring no disruptions. Kashmiri migrant voters were also empowered to exercise their franchise through 24 special polling stations set up in Jammu, Udhampur and Delhi. Home voting facilities were introduced for the first time in assembly elections in J&K. In connection with the ongoing assembly elections in the Union Territory of Jammu and Kashmir, Prime Minister Narendra Modi is visiting Kashmir today and is scheduled to address an election rally there. He will address an election rally at Srinagar in the morning and at Katra, the base camp of Sri Mata Vaishno Devi Shrine, in the afternoon.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मध्य प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आज उज्जैन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति सफाई मित्रों से बातचीत करेंगी और उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भी शामिल होंगी। इसके बाद वे इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल झारखंड में रांची स्थित ICAR के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगी।
The four-day mega event, World Food India 2024, will begin today in New Delhi. Food Processing Industries Ministry said over 90 countries, 26 states and union territories and 18 central ministries will participate in the event. Japan will be the partner country and Vietnam and Iran will participate as focus countries. The event will feature major convergence of innovation, technology and sustainability in the food processing sector. The event is also a landmark occasion to highlight India's emerging role as a global powerhouse in food processing.
अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने चार वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है। प्रमुख उधार दर 0.5% अंक कम होकर 4.75 से 5% के दायरे में आ गई है। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने दो दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC की बैठक के बाद 2024 के लिए अपने छठे नीतिगत निर्णय की घोषणा की। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा कि कम होती मुद्रास्फीति स्थिति और नौकरी बाजार की बढ़ती चिंताओं के बीच ये कदम अत्यंत आवश्यक था। दर में कटौती से अमरीका के उधारकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। वर्ष के अंत तक दरों में 0.5% की और कमी किए जाने की उम्मीद है। जेरोम पॉवेल ने कहा कि उनका लक्ष्य उच्च उधार लागत के बीच एक मजबूत श्रम बाजार बनाए रखना है। ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद वित्तीय बाजारों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
In Lebanon, at least 32 people have been killed and thousands injured in a series of explosions during the past 2 days. The blasts involved communication devices, some of which are used by militant group Hezbollah. According to the country's health ministry, the death toll in yesterday's walkie-talkie explosions in Lebanon has risen to at least 20, with more than 450 injured. Earlier on Tuesday, pager blasts killed at least 12 people and wounded about 3,000 others. The latest explosions occurred near a large crowd gathered for the funeral of victims from the earlier blasts. The first round of explosions began in Beirut and several other areas at approximately 3:45 p.m. local time on Tuesday, followed by another wave around 5 p.m. on Wednesday. The attacks have heightened fears in Lebanon, particularly after a similar sophisticated strike targeting pagers used by Hezbollah members. Lebanese officials urged people who possess pagers to discard them. Two companies, one based in Taiwan and the other in Hungary, accused of manufacturing the pagers, have denied any responsibility. And moving over to sports now. In the China Open Badminton Tournament, India's Malvika Bansal stunned world number 7 and Paris Olympics bronze medalist Gregoria Mariska Tunjung in the women's singles opening round in Changzhou yesterday. Malvika Bansal, ranked 43rd in the BWF standings, defeated the Indonesian shuttler by 26-24, 21-19. In the second round, the 23-year-old Indian will face Scotland's Kirsty Gilmore this morning, becoming the lone Indian representative remaining in the tournament. Gilmore advanced to the second round after defeating India's Samia Imad Faruqi yesterday. Meanwhile, world number 39 Akarshi Kashyap lost her match, falling to Chinese Taipei's Chiu Pin Chia. Kiran George also exited in the opening round of men's singles, losing to world number 11 Kenta Nishimoto of Japan. In women's doubles, Gayatri Gopichand and Teresa Jolly were defeated by the lower-ranked Taiwanese pair of Hsieh Pei Shan and Hyung En Zhu. On the women's doubles pair of Swetaparna Panda and Rituparna Panda lost their opener against Chinese Taipei's Teng Chun Sun and Yang Chu Kyun.
भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू होगा। गौतम गंभीर के भारतीय टीम का कोच बनने के बाद भारत के लिए ये पहली टेस्ट श्रृंखला है। बांग्लादेश ने हाल ही में अपनी भूमि पर पाकिस्तान से टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जीतकर इतिहास रचा था। इसे देखते हुए उसके हौसले बुलंद हैं। इधर भारतीय टीम भी पिछले दिनों अपनी धरती पर इंग्लैंड से 4-1 से टेस्ट श्रृंखला जीतकर उत्साह बनाए हुए हैं। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शेफाली सिंह।
जी रवि, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज फ्रॉम चेन्नई। The founder of Sankalp Learning Center and Special Needs School, Sulata Ajit, has said that there are more than 1 lakh children with special needs, but there is a shortage of special education teachers. There's a need for sustainable efforts to study the evolving learning requirements of special needs children and improve their curriculum. To address this gap, Sankalp has introduced a 2-year full-time diploma in special education accredited by the Rehabilitation Council of India, with its first batch set to graduate next year. Sankalp will also host Learn 2024, a 2-day international conference on 21st and 22nd September, focusing on inclusion and empowerment of neurodiverse children and young adults. B. Jayalakshmi, principal, Sankalp Open School, said that the conference will offer valuable insights for special educators, mainstream teachers, parents and caregivers, helping integrate neurodivergent individuals into the community. In another news, Tamil Nadu may soon put daily time and cash limits on online gaming and also totally ban it between midnight and 5 a.m. तो रवि, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन गेमिंग के काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं बच्चों पे, वो लोग ऑलमोस्ट मोबाइल एडिक्शन हो रहा है और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनके मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत डेट्रीमेंटल है. तो तमिलनाडु की ये इनिशिएटिव को वी वुड ऑल लाइक टू अप्रिशिएट.
बिल्कुल.
People may not be allowed to play for more than 4 hours a day, with each session capped at 2 hours. Daily and monthly cash limits of 5,000 rupees and 20,000 rupees and mandatory Aadhaar verification for registration on gaming platforms are also planned. The regulations have been proposed by the Tamil Nadu Online Gaming Authority that was set up last year. The app now require a one-time password during registration, allowing children to misuse their parents' phones and continue playing. And now news from Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has informed media persons in Bengaluru yesterday that a task force will be formed to plan and execute plans and strategies to contain drug menace in the state. He said that the task force will function under the leadership of the Home Minister. The police station officers, DSPs, ACPs and Superintendent of Police will be held accountable for implementing anti-drug trafficking strategies. Siddaramaiah added that laws will be amended to impose harsh punishments such as life imprisonment on peddlers. He further said that the drug problem is severe in the Bangalore East Division and plans are afoot to address the issue. Information and awareness campaigns will be launched to alert and educate the parents, youth and families. In another news, Swachhata Hi Seva Cleanliness Drive by Southwestern Railways with headquarters in Hubli is promoting clean localities and environmental sustainability. The railway employees and the public came together to clean the railway stations, trains, offices and railway premises. The campaign emphasized on Swabhav Swachhata, Sanskar Swachhata that teaches physical cleanliness along with clean habits and outlooks. Under the Ek Ped Markinam campaign, a tree plantation drive was undertaken. The general manager of the division, Arvind Srivastav, planted a sapling to mark the occasion. And lastly, news from Hyderabad. Telangana Chief Minister Revanth Reddy has launched a new MSME Policy 2024 to mainly tackle 6 key challenges faced by micro, small and medium enterprises, MSMEs. The policy involves a 4,000 crore rupees investment over 5 years. Along with Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka and IT Minister D. Sridhar Babu, Chief Minister Revanth Reddy formally launched the policy in Hyderabad yesterday. Addressing the gathering, the Chief Minister appreciated former Prime Minister P.V. Narasimha Rao's policies for opening India's economy through liberalization, privatization and globalization, LPG. He said the new policy creates industrial opportunities accessible to Dalits and women and for encouraging MSMEs. He assured that his government will fulfill the previous administration's incentive promises regardless of political changes, stating that there is a gap between education and jobs and a shortage of skilled workers. He said discussions with Tata led to a plan to upgrade industrial training institutes, ITIs, with 2,400 crore rupees investment. And now, dear listeners, for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to Ravi.
धन्यवाद शिफाली. शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं और शिफाली, हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो नदियों को भी पूजता है.
जी.
तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली के जनपद स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज नदी उत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे. विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे इस उत्सव का उद्देश्य भारत की नदियों के महत्व को उजागर करना और उनके समृद्ध सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है. 3 दिवसीय नदी उत्सव में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. नदी उत्सव 21 सितंबर तक चलेगा. इसमें प्रवेश सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल दिल्ली नगर निगम MCD मेडिकल कॉलेज और हिंदू राव अस्पताल के दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित किया. इस दौरान उपराज्यपाल ने उभरते चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को प्रमाण पत्र दिए और संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को अपने चिकित्सा अभ्यास में करुणा को शामिल करना चाहिए. अपनी शुभकामनाएं देते हुए श्री सक्सेना ने छात्रों को प्रतिभाशाली कहा और उन्हें जीवन भर सीखते रहने की सलाह दी. उनके अलावा नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबेरॉय भी दीक्षांत समारोह में मौजूद थीं. राजधानी में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए रिंग रोड स्थित विजय घाट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आनंदिता पार्क विकसित किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पार्क का दौरा किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब इस पार्क के कायाकल्प करने का काम शुरू किया गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना सुंदर बनेगा। तो मुझे तो लगता है शेफाली
जी,
अब हमें भी जाना चाहिए इस पार्क को देखने के लिए।
डेफिनेटली।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मनोनीत मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय को 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की है। सूत्रों ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद सुश्री आतिशी शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकती हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सुश्री आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दिल्ली जल बोर्ड के चंद्रावल वाटर वर्क से निकलने वाली 500 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन में रिसाव की मरम्मत कार्य की वजह से शुक्रवार सुबह 11 बजे से अगले 12 घंटे के लिए कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार सिविल लाइन्स स्थित हिंदू राव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के इलाके, पुराना और नया राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी, छावनी क्षेत्र और दक्षिण दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों को आवश्यकतानुसार पानी इस्तेमाल करने और इकट्ठा कर रखने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर लोग नजदीकी जल बोर्ड से संपर्क करके पानी के टैंकर मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र भारत की विकसित भारत परिकल्पना को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवी मुंबई में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर वी निर्माण संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शिंदे ने महाराष्ट्र को एक उद्योग अनुकूल राज्य बताया। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में सेमीकंडक्टर चिप्स के महत्व पर बल दिया। इस परियोजना में महाराष्ट्र सरकार ने 36,573 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत को अपना स्वयं का चिप उद्योग विकसित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ द्वारा 31 अक्टूबर 2024 तक निःशुल्क सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 1,500 अस्पताल भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं शिफाली और चलते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में बाढ़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा, हुगली और पश्चिम मेदिनीपुर का दौरा किया। पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश के कारण कुछ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मैथन और पंचेत बांधों तथा दुर्गापुर बैराज से पानी छोड़ा गया है। हावड़ा जिले के उदय नारायणपुर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का एक दल तैनात किया गया है। दक्षिण बंगाल के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान जारी है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शेफाली के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो शेफाली, सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम, और आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है।
हल्का सुहाना सा हो गया है मौसम।
बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है, जो कि हो ही रही है
जी।
आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बात करें कोलकाता की, तो वहां भी बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शिफाली
जी, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वेदर ऑफ आवर सदर्न सिटीज। Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो शुरुआत 1891 से करते हैं, जब आज ही के दिन विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में पहली बार मंचन किया गया था।
On 19 September 1893, New Zealand became the first country to grant all women the right to vote.
1893 में आज के दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था।
On this day in 1896, Bombay plague epidemic began when Dr. Acacio Gabriel Vegas detected the first case in Mandvi. It went on to spread and killed 12 million in India. And in the year 1960, Sindhu River water sharing settlement was signed between India and Pakistan.
1962 में आज के दिन भारत की उत्तरी सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया। 1982 में आज के दिन स्कॉट फाहमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने। और 1983 में आज के दिन ब्रिटिश उपनिवेश कैरिबियन द्वीप सेंट किट्स एवं नेविस स्वतंत्र हुए।
On this day in 1986, US federal health officials announced the first antiretroviral medication, AZT, to prevent and treat HIV/AIDS.
1988 में आज के दिन इजराइल ने परीक्षण उपग्रह होरिजोन आई का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था।
In the year 1990, Planning Commission announced 8th five-year plan proposals with a total outlay of 610,000 crore rupees. In the year 1997, India won the Sahara Cup by winning the third match as well. In the year 2000, Karnam Maleshwari became the first Indian woman to win an Olympic medal, a bronze, at the Sydney Olympics.
सन 2006 में आज के दिन सरकार का तख्ता पलटने के बीच थाईलैंड में इमरजेंसी लागू की गई और जनरल सुरायुद्ध प्रधानमंत्री बने। 2006 में ही आज के दिन उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध को जापान ने मंजूरी प्रदान की। 2006 में ही आज के दिन भारत ने आईएमएफ से सहयोग का वायदा किया।
And on this day in the year 2007, MS Dhoni was named the captain of Indian cricket team for the first time for the ICC World 2020.
और 2007 में आज एक दिन साइबर वॉर की संभावना को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने अस्थाई कमांड का गठन किया। और अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज जो सबसे पहला नाम है शिफाली, वो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का, जो भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान व्यक्ति थे। शेफाली शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। पूरी तरह से निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक भातखंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया था। और उन्होंने देश भर में घूम घूम कर उस्तादों से बंदिशें एकत्रित करने, विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानक रूप निर्धारित करने और संगीत शास्त्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया था। और यही नहीं, शास्त्रीय ज्ञान के लिए भातखंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के चार भाग मराठी भाषा में भी लिखे थे।
And dear listeners, today is the death anniversary of Slim Dusty, an Australian country music singer, songwriter, guitarist and producer. He was an Australian cultural icon referred to universally as Australia's king of country music and one of the country's most awarded stars. He was known to record songs in the legacy of Australia genre, particularly of bush life. So let's listen to one of his songs, Waltzing Matilda.
Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me.
Uh, and dear listeners, today is the birthday of Maqsood Mehmood Ali, better known as Lucky Ali, an Indian singer, songwriter and actor. With several popular singles and albums, he emerged as a significant figure of indie pop during the 1990s. He's known for his songs in Kaho Na Pyar Hai, Tamasha and Sur. Ali made his debut on the Indian music scene with the award-winning album Suno. The song O Sanam from Suno launched his career. His next album Sifar was noted for its music, lyrics and vocals. So let's listen to one of his and my favorite songs by him, Kitni Haseen Zindagi by Lucky Ali.
Kitni haseen zindagi hai ye, honton pe jaise kahani hai, sada yahan kis ka dikhana hai, humne ki rawani.
और अशरफ अली, अब बात कर लेते हैं सुनीता विलियम्स की. एक बहुत ही जाना माना, बहुत ही सुप्रसिद्ध नाम, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की वे दूसरी महिला हैं. वे भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं. इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 194 दिन 18 घंटे रहकर नया विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया है. उनके पिता दीपक पांड्या अमेरिका में एक डॉक्टर हैं. सुनीता विलियम्स नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक, धर्मार्थ धन जुटाने वाली, पशु प्रेमी, मैराथन धाविका और अब अंतरिक्ष यात्री एवं विश्व कीर्तिमान धारक भी हैं.
जी. And dear listeners, today is the birth anniversary of Indrani Rehman, an Indian classical dancer of Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathakali, Odissi and a beauty pageant title holder. In 1952, she won the Miss India pageant and then represented India in first ever Miss Universe. Later, she joined her mother Ragini Devi's dance company. She popularized the Indian classical dance form Odissi during her international tours. She has received Padma Shri and the Sangeet Natak Akademi Award. What you're listening to is from one of her performances.
और शेफाली, अब बात कर लेते हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने सिर्फ 6 हिंदी फिल्मों में काम किया और उसके बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़कर देव आनंद के साथ घर बसा लिया. हम बात कर रहे हैं कल्पना कार्तिक के बारे में, जिनका जन्म हुआ 19 सितंबर 1931 को अविभाजित भारत के लाहौर में. कल्पना कार्तिक का असली नाम मोना था, मगर जब वो फिल्मों में आई तो डायरेक्टर और देवानंद के भाई चेतन आनंद ने उनका नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया. आगे चलकर वे इसी नाम से मशहूर हुई. 19 सितंबर 1931 को अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मी कल्पना कार्तिक का परिवार शिमला में शिफ्ट हो गया. उनके पिता तहसीलदार हुआ करते थे और वे अपने 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटी थी. उन्होंने शिमला से अपनी पढ़ाई लिखाई की. पढ़ाई के दौरान कल्पना कार्तिक ने मिस शिमला कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जहां डायरेक्टर चेतन आनंद की नजर उन पर पड़ी और चेतन आनंद ने ही कल्पना की फैमिली को मनाया कि वे उन्हें फिल्मों में काम करने दें. और जैसे तैसे परिवार मान गया और चेतन आनंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म से वे जुड़ गईं. और बस फिर क्या था, कल्पना ने शिमला से मुंबई का रुख किया और कल्पना ने साल 1951 में बाजी फिल्म में डॉक्टर रजनी की भूमिका निभाकर खुद को साबित कर दिया. फिल्म में वे देव आनंद के अपोजिट नजर आईं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत पसंद की गई और कल्पना को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला.
जी.
हमने उनके ऊपर पिक्चराइज गानों की एक मेडली बनाई है,
तो आइए सुनते हैं.
खेली हुई है सपनों की बाही, आ जा चल दे कहीं दूर, वही मेरी मंजिल वही तेरी राही, आ जा चल दे कहीं दूर. खेली हुई है.
Also, Ravi, her major films were Aandhiya, Humsafar, Taxi Driver, House Number 44 and Naudo Gyara.
जी, बिल्कुल सही जानकारी दी आपने. चलते चलते आज का विचार कि सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती. इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शेफाली सिंह को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की. नमस्कार.